एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। हाँ, ये नाम सुनते ही शायद ख्याल आता है धीमी रफ्तार बहसें, राजनीतिक खींचतान।
बिल्कुल, और अक्सर सवाल उठता है कि क्या ये संस्था मतलब काम ही नहीं कर रही, क्या ये टूटी हुई है जैसा कई लोग कहते हैं।
हाँ, और इसी सवाल को समझने के लिए आज हम डोनाल्ड ए. रिची के काम को देख रहे हैं। वो हमें इन सतही बातों से परे ले जाते हैं।
खबरों में तो बस हेडलाइन दिखती हैं, कभी गतिरोध कभी टकराव।
सही बात है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संस्था असल में ऐसी है क्यों, क्या ये धीमापन, ये टकराव, क्या ये जानबूझकर है।
और ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए, अमेरिकी कांग्रेस सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे शक्तिशाली लोकतंत्रों में से एक का केंद्र है।
बिल्कुल, इसकी कार्यप्रणाली हमें ये सिखाती है कि कैसे एक बड़े विविध देश में शक्ति को संतुलित किया जाता है, कैसे अलग अलग विचारों के बीच कानून बनते हैं।
हाँ, और रिची का नज़रिया हमें जो आम धारणाएं हैं उनसे हटकर सोचने पर मजबूर करता है।
और डोनाल्ड रिची इस पर बात करने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये बहुत दिलचस्प है। वो कोई अकेडमिक नहीं है जो बस दूर से देख रहे हों।
अच्छा,
उन्होंने 3 दशक से ज़्यादा, सोचिए 30 साल से ज़्यादा, अमेरिकी सीनेट के इतिहासकार के तौर पर काम किया है। वो अंदर रहे सिस्टम के
3 दशक। ओह, इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ कानून बनते नहीं देखे होंगे, बल्कि वो जो अंदरूनी बातें होती हैं, अलिखित नियम, लोगों के आपसी रिश्ते, वो सब करीब से महसूस किया होगा।
बिल्कुल, उन्होंने सैकड़ों सीनेटरों, उनके स्टाफ के इंटरव्यू लिए हैं, तो उन्हें वो अंदर की कहानी पता है जो शायद सिर्फ रिपोर्ट में नहीं मिलती।
ये तो वाकई बहुत अलग नजरिया देता होगा, मतलब किताबी ज्ञान भी और जमीनी हकीकत की समझ भी।
हाँ, और उन्होंने कांग्रेस को अलग अलग दौर में देखा है, वो समय भी जब पार्टियों में सहयोग ज्यादा था, और आज का जो बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण है वो भी, तो वो आज की चुनौतियों को एक ऐतिहासिक संदर्भ में रख पाते हैं।
उनकी किताबें भी काफी चर्चित हैं, पुरस्कार भी मिले उन्हें।
जी हाँ, अमेरिकी राजनीतिक संस्थाओं पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है।
तो फिर उनकी किताबों का सार क्या है, मतलब मुख्य आइडिया क्या है? आपने कहा था थोड़ा चौंकाने वाला है।
हाँ, मुख्य आइडिया यही है कि ये जो अमेरिकी कांग्रेस है, जिसकी हम अक्सर आलोचना सुनते हैं कि ये धीमी है, पक्षपाती है, बहुत जटिल है।
हाँ, बिल्कुल यही सुनते हैं।
रिची कहते हैं कि ये काफी हद तक वैसे ही काम कर रही है जैसा इसे बनाने वालों ने, मतलब फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था।
क्या मतलब कि उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया था, धीमा और जटिल?
बिल्कुल, उनका तर्क है कि इसे जानबूझकर एक विचार विमर्श करने वाली विकेंद्रीकृत संस्था बनाया गया था, मतलब शक्ति बटी हुई हो।
अच्छा,
इसका मकसद तेजी से काम करना नहीं बल्कि शक्ति पर अंकुश लगाना था। तो ये जो धीमी गति है, ये बहसें हैं, ये समझौते की जरूरत, ये सिस्टम की खामियां नहीं बल्कि इसकी पहचान है, इसका डिजाइन है।
ओ, तो ये खराबी नहीं बल्कि विशेषता है, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है।
हाँ, रिची का यही कहना है, कांग्रेस टूटी हुई नहीं है, ये अपने डिजाइन के हिसाब से चल रही है। और ये डिजाइन क्यों? ताकि बहस हो, कोई एक व्यक्ति या समूह हावी ना हो पाए, और अमेरिका जैसे बड़े और विविध देश के जो अनगिनत, कभी कभी एकदम उल्टे हित हैं, वो सब सामने आ सके।
तो उनकी किताबें हमें इसी डिजाइन की बारीकियों में ले जाती हैं, संविधान से लेकर आज तक।
जी हाँ, चलिए इसी डिजाइन को थोड़ा और समझते हैं। रिची हमें सबसे पहले संविधान की ओर ले जाते हैं। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 1, जो सबसे लंबा है, वो पूरा का पूरा कांग्रेस को ही समर्पित है।
सबसे लंबा अनुच्छेद, ये तो अपने आप में कुछ कहता है।
हाँ, ये दिखाता है कि संस्थापकों के लिए कांग्रेस सरकार की पहली और सबसे अहम शाखा थी जो सीधे लोगों से जुड़ी हो।
और शक्तियां भी तो वहीं दी गई, टैक्स लगाना, पैसा, व्यापार, सेना, युद्ध।
हाँ, सारी बुनियादी शक्तियाँ, और सबसे बड़ी ताकत जिसे कहते हैं पर्स की शक्ति,
पावर ऑफ द पर्स,
यानी पैसे पर कंट्रोल।
बिल्कुल,
सरकारी खजाने पर नियंत्रण, इसी से वो बाकी शाखाओं पर, खासकर राष्ट्रपति पर लगाम रखती है।
लेकिन साथ ही शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत भी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेज।
अच्छा, यानी एक दूसरे पर नजर रखना। हाँ, सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाया कि सरकार की अलग अलग शाखाएं एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी टक्कर में रहें, प्रतिस्पर्धा करें, ताकि कोई एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। संस्थापकों को तानाशाही का डर था।
तो ये टकराव और समझौता, ये सब सिस्टम का हिस्सा है।
हाँ, ये खिंचाव जानबूझकर पैदा किया गया है, और ये खिंचाव सिर्फ शाखाओं के बीच नहीं, कांग्रेस के अंदर भी है, उसके दो सदनों के डिजाइन में।
हाँ, हाउस और सीनेट, ये कैसे बने थे? कुछ समझौता हुआ था शायद।
बिल्कुल, महान समझौता या ग्रेट कॉम्प्रोमाइज कहते हैं इसे। बड़ा सवाल था कि राज्यों को प्रतिनिधित्व कैसे मिले। बड़े राज्य चाहते थे आबादी के हिसाब से, छोटे राज्य चाहते थे सबको बराबर।
तो दोनों की बात रख ली गई।
हाँ, दो सदन बना दिए, एक प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ सीटें आबादी के हिसाब से मिलती हैं। आज 435 सदस्य हैं, कार्यकाल सिर्फ 2 साल का।
2 साल, यानी हमेशा चुनाव का दबाव रहता होगा।
बिल्कुल, इसे जनता की नब्ज के ज्यादा करीब माना गया, ज्यादा गतिशील, ज्यादा उथल पुथल वाला।
और दूसरा सदन सीनेट।
सीनेट में हर राज्य को बराबर 2 सीटें मिली, चाहे राज्य कितना भी छोटा हो या बड़ा। 100 सदस्य, कार्यकाल 6 साल का। इसे स्थिरता, लंबे नजरिए और विचार विमर्श के लिए बनाया गया। एक तरह की ठंडा करने वाली तश्तरी।
ठंडा करने वाली तश्तरी, ये दिलचस्प है। मतलब जल्दबाजी में फैसले ना हो।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और दोनों के काम करने का तरीका भी अलग है। हाउस क्योंकि बड़ा है, कार्यकाल छोटा है, तो वहाँ नियम ज्यादा सख्त हैं। बहस का समय सीमित होता है, हाउस स्पीकर बहुत शक्तिशाली होता है।
और सीनेट में?
सीनेट में बहस ज्यादा खुली होती है, और यही वो चीज आती है जिसके बारे में बहुत सुना जाता है, फिलिबस्टर।
हाँ, फिलिबस्टर, ये क्या है असल में? सुनते तो है कि इससे बिल रुक जाते हैं।
देखिए, ये एक प्रक्रिया है जिससे कोई एक सीनेटर या कुछ सीनेटर मिलकर किसी बिल पर बहस को बस लंबा खींचते जाते हैं, ताकि उस पर वोटिंग ही ना हो पाए।
अच्छा, सिर्फ बहस लंबी करके।
बहुमत वाली पार्टी को भी अक्सर विपक्ष से समझौता करना पड़ता है बिल पास कराने के लिए।
तो ये समझौते को बढ़ावा देता है
एक तरह से। हाँ, लेकिन ये गतिरोध का कारण भी बनता है। इसे तोड़ने के लिए क्लोजर वोट चाहिए होता है, जिसके लिए ज्यादातर 60 वोटों की जरूरत होती है, जो मिलना आसान नहीं होता।
तो ये सीनेट को वाकई विचार विमर्श वाला सदन बनाता है, पर काम धीमा भी कर देता है।
सही कहा। तो ये तो हुई सदनों की बात, लेकिन रिची कहते हैं कि कांग्रेस का असली काम, जो मेहनत वाला काम है, वो सदनों के फ्लोर पर उतना नहीं होता जितना
समितियों में, कमिटीज में।
बिल्कुल, वो कांग्रेस की वर्क हॉर्स है। सोचिए, हजारों बिल आते हैं हर साल, सबकी जांच पूरे सदन में कैसे हो सकती है?
नामुमकिन।
इसीलिए स्थायी समितियां हैं जो अलग अलग विषयों पर फोकस करती हैं, कृषि, विदेश नीति, बजट वगैरह। यहीं बिलों की बारीकी से जांच होती है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, बिलों में बदलाव होते हैं। इसे मार्कअप कहते हैं।
और इन समितियों के अध्यक्ष काफी ताकतवर होते होंगे।
हाँ, खासकर वो समितियां जो पैसे बांटती हैं, जैसे विनियोग समितियां। यही असली मोल भाव होता है, कानून का मसौदा यहीं तैयार होता है।
अच्छा, और इन समितियों और पूरे सदन को चलाने के लिए फिर नेतृत्व की जरूरत पड़ती होगी, पार्टी लीडर्स की।
जी हाँ, स्पीकर, मेजॉरिटी लीडर, माइनॉरिटी लीडर, व्हिप, ये सब पद इसीलिए हैं ताकि पार्टियों में तालमेल रहे, एजेंडा आगे बढ़े, सदस्यों को एकजुट रखा जाए।
पर ये आसान नहीं होता होगा सबको साथ लेके चलना।
बिल्कुल नहीं। रिची कहते हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप का मतलब हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि गठबंधन बनाना है। नेताओं को लगातार अपने सदस्यों को मनाना पड़ता है, उनके अलग अलग हितों में
ये बात तो आज के समय में और भी मुश्किल लगती होगी जब पार्टियां इतनी बटी हुई हैं।
हाँ, ये बढ़ता ध्रुवीकरण गठबंधन बनाने और समझौते करने को और भी कठिन बना देता है, जिससे हमें अक्सर वो गतिरोध दिखाई देता है जिसकी हम बात कर रहे थे।
तो हमने देखा कि डिजाइन धीमा है, 2 सदन है, काम समितियों में होता है, नेतृत्व को सबको मनाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ कानून बनाना तो नहीं है, एक और बड़ा काम है शायद।
हाँ, बहुत महत्वपूर्ण काम है, सरकार पर नजर रखना, निरीक्षण, जिसे अंग्रेजी में ओवरसाइट कहते हैं।
ओवरसाइट?
हाँ।
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि कांग्रेस कार्यकारी शाखा यानी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के कामकाज की जांच कर सकती है, अधिकारियों को बुलाकर सवाल पूछ सकती है, किसी मुद्दे पर जांच बैठा सकती है।
जैसे वाटरगेट?
हाँ, वाटरगेट कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब कांग्रेस की जांच ने राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। ये शक्ति लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए।
हाँ, जैसे भारत में भी हम देखते हैं, संसद सरकार से सवाल पूछती है या संसदीय समितियां जांच करती हैं, ये उसी तरह की भूमिका है।
बिल्कुल, ये नियंत्रण और संतुलन का एक अहम हिस्सा है।
और एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी रिची की किताब से, दो कांग्रेस, ये क्या है?
हाँ, टू कांग्रेसेस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि कांग्रेस एक ही समय में दो अलग अलग तरह की संस्था है।
दो कैसे?
एक है राष्ट्रीय संस्था, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठकर बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कानून बनाती है, बहस करती है। ये वो कांग्रेस है जिसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं।
ठीक है, ये हुई एक कांग्रेस, और दूसरी?
दूसरी है 535 अलग अलग सदस्यों का समूह। हर सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र, अपने जिले या राज्य का प्रतिनिधि है। वो उनकी स्थानीय जरूरतों, उनकी मांगों पर ध्यान देता है, उनके लिए काम करता है।
अच्छा, और यहीं से वो विरोधाभास आता है क्या कि लोग कांग्रेस संस्था को तो पसंद नहीं करते पर अपने सांसद या सेनेटर को पसंद करते हैं?
बिल्कुल, लोग राष्ट्रीय संस्था के तौर पर कांग्रेस को देखते हैं तो कहते हैं ये अक्षम है, झगड़ालू है, काम नहीं करती। लेकिन अपने स्थानीय प्रतिनिधि को देखते हैं तो लगता है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी सुन रहा है।
हाँ, ये बात तो समझ में आती है।
तो हर सदस्य को इन दो भूमिकाओं के बीच, एक राष्ट्रीय स्तर के विधायक और एक स्थानीय प्रतिनिधि, लगातार संतुलन बनाना पड़ता है।
तो अगर हम रिची के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकालें तो पहली क्या होगी?
पहली और सबसे अहम बात, संघर्ष और समझौता इसके डिजाइन का हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज बाय डिजाइन। ये धीमापन, ये बहस, ये जानबूझकर डाला गया है ताकि शक्ति बटी रहे और अलग अलग हितों को जगह मिले। ये विफलता नहीं है।
ठीक है, दूसरी बात?
दूसरी, यही टू कांग्रेसेस की हकीकत, द टू कांग्रेसेस फिनोमेना। ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था भी है और 535 स्थानीय प्रतिनिधियों का समूह भी। ये उसकी कार्यप्रणाली और लोगों की धारणाओं दोनों को प्रभावित करता है।
सही है। तीसरा?
तीसरा, कांग्रेस एक स्थिर नहीं बल्कि विकसित होती संस्था है। इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। ये समय के साथ बदली है, इसने अपने नियम बदले हैं, प्रक्रियाएं बदली हैं, नई चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की है। ये एक जीवित संस्था है।
चौथा?
चौथा, कुशलता और विचार विमर्श के बीच का वो तनाव, टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड डिलिब्रेशन। जो चीजें हमें धीमी या अक्षम लगती हैं, जैसे फिलिबस्टर या लंबी समिति प्रक्रिया, वो अक्सर बहस, पुनर्विचार और अल्पसंख्यक आवाजों को सुनने का मौका देती हैं। लोकतंत्र में ये संतुलन साधना पड़ता है।
और पांचवा?
पांचवा, निगरानी और जांच की अहम शक्ति, पावर ऑफ ओवरसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन। सिर्फ कानून बनाना ही नहीं, सरकार पर नजर रखना, उसकी जवाबदेही तय करना, ये कांग्रेस का एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण काम है।
ये पांचों बातें कांग्रेस को समझने का एक अच्छा फ्रेमवर्क देती हैं। रिची की किताबों में कुछ यादगार विचार या पंक्तियां भी होंगी?
हाँ, उनके मुख्य विचारों को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहला तो ये, कांग्रेस टूटी हुई नहीं है, ये ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसा संस्थापकों ने इसे डिजाइन किया था। ये हमें आलोचना करते वक्त उसके मूल डिजाइन को याद रखने को कहता है।
ये बार बार आ रहा है, मतलब ये बहुत केंद्रीय विचार है।
बिल्कुल। दूसरा, अमेरिकी प्रणाली की असली ताकत या कमाल उसकी तेजी में नहीं बल्कि अलग अलग और अक्सर टकराने वाले हितों के बीच समझौता करने की क्षमता में है। मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश रफ्तार से ज्यादा जरूरी है।
समावेश पर जोर।
हाँ। तीसरा, कांग्रेस का हर सदस्य दो दुनियाओं में जीता है, एक वॉशिंगटन की राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया और दूसरी अपने घर, अपने चुनाव क्षेत्र की दुनिया। ये उनके काम के उस निरंतर तनाव को दिखाता है जिसकी हमने बात की थी,
राष्ट्रीय और स्थानीय भूमिका का संतुलन।
जी। और चौथा, कांग्रेस में नेतृत्व का मतलब हुक्म चलाना नहीं बल्कि गठबंधन बनाना है। ये लोकतांत्रिक नेतृत्व की प्रकृति को उजागर करता है कि आपको लोगों को मनाना पड़ता है, साथ लाना पड़ता है।
ये आखिरी बात मुझे बहुत अहम लगी किसी भी लोकतंत्र के लिए।
सही कहा।
तो ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि एक आम इंसान के लिए इन बातों का क्या मतलब है, हम इस जानकारी का क्या करें?
देखिए, कई तरह से ये उपयोगी हो सकता है। पहला तो है बेहतर नागरिक भागीदारी, मोर इन्फॉर्म्ड सिविक एंगेजमेंट। अगर आप समझते हैं कि कानून कैसे बनता है, समितियां कैसे काम करती हैं, तो आप राजनीतिक प्रक्रिया को बेहतर समझ सकते हैं
और शायद अपनी बात सही जगह और सही समय पर पहुंचा सकते हैं।
बिल्कुल। आपको पता होगा कि किस मुद्दे पर किससे संपर्क करना है, किस स्टेज पर अपनी आवाज उठाना ज्यादा प्रभावी होगा।
दूसरा फायदा,
दूसरा, खबरों को ज्यादा गहराई से समझना, क्रिटिकल न्यूज कंजम्पशन। जब आप टीवी पर या अखबार में कांग्रेस में गतिरोध जैसी खबरें देखते हैं तो आप सिर्फ हेडलाइन पर नहीं रुकेंगे, आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये डिजाइन का नतीजा है, किन मुद्दों पर असहमति है।
हाँ, सतही विश्लेषण से आगे जा पाएंगे।
सही। तीसरा, शायद राजनीतिक निराशा को कम करने में मदद मिले, मैनेजिंग पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। ये समझना कि लोकतंत्र में बहस, असहमति, धीमी प्रक्रिया, ये सब स्वाभाविक है, शायद हमारी झुंझलाहट को थोड़ा कम कर सकता है।
एक यथार्थवादी नजरिया मिल सकता है।
हाँ। और चौथा, जो लोग कुछ खास पेशों में हैं, जैसे कानून, बिजनेस, पत्रकारिता या किसी मुद्दे की वकालत करते हैं, उनके लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि विधायी प्रक्रिया कैसे काम करती है, नीतियां कैसे बनती हैं, लॉबिंग कैसे होती है, बजट कैसे तय होता है, ये उनके काम को प्रभावी बनाता है।
ये तो बहुत व्यवहारिक बातें हैं। तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि संस्थापकों ने जानबूझकर इसे कुशल नहीं बनाया। मतलब उन्होंने तेजी से काम करने की जगह विचार विमर्श और नियंत्रण को ज्यादा महत्व दिया। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये याद रखना जरूरी है।
हाँ, ये बात वाकई सोचने वाली है। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कांग्रेस एक तरह से अमेरिकी लोगों का आईना है। विभेद, कभी एकजुट कभी बटा हुआ, हमेशा बहस करता हुआ। और शायद जो हमें उसकी कमजोरियां लगती हैं, वही उसकी ताकत भी है। सबको जगह देने की कोशिश, शक्ति को निरंकुश ना होने देना।
और वो समझौते वाली बात?
हाँ बिल्कुल। ये समझना कि समझौता करना हमेशा कमजोरी नहीं होता, बल्कि अक्सर इतने विविध समाज में साथ चलने का, शासन चलाने का एक जरूरी तरीका होता है। ये बात मुझे लगता है भारत जैसे देश के लिए भी बहुत प्रासंगिक है।
सही कहा। रिचि का विश्लेषण हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। पर यहाँ एक सवाल शायद मन में रह जाता है सोचने के लिए।
क्या?
कि ये जो डिजाइन है, जो मुख्य रूप से 18वीं सदी की दुनिया को ध्यान में रखकर बना था, क्या वो आज की 21वीं सदी की जो एकदम अलग तरह की चुनौतियां हैं, वैश्विक, तकनीकी, उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, या अब इसमें भी कुछ बुनियादी बदलावों की जरूरत है?
ये एक बड़ा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।